बुलाए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, हम पहुंच गए हैं आज हमारी क्लास नंबर 11, जिसका नाम है पुराने नियम का क्या महत्व है। पुराने नियम में हमारे सीखने के लिए क्या है, पुराने नियम का क्या महत्व है, ये बाइबल में क्यों डाला गया। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, इस विषय पे बात करेंगे कि पुराना नियम का मकसद क्या है बाइबल में और पुराने नियम का महत्व क्या है, क्योंकि 66 किताब में से 39 किताब तो पुराने नियम की है ना। और आजकल अगर हम देखें तो ज़्यादा पुराने नियम को महत्व भी नहीं दिया जाता है। बाइबल सोसाइटी ने भी क्या करना शुरू कर दिया, खाली नया नियम प्रिंट करना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा वो ब्लू कलर का नया नियम की किताब। पुराने नियम में से अगर कोई किताब पढ़ी जाती है वो है भजन संहिता या नीति वचन या सबोपदेशक या थोड़ा बहुत यशाया। ऐसे ज़्यादा ध्यान तो कलीसियाओं में पुराने नियम पे नहीं दिया जाता। और कई लोग सोचते हैं पुराना नियम तो इतिहास है, वो इज़राइल की के साथ जो घटनाएं हुई वो सब मतलब के एक तरह की हिस्ट्री है, वो इज़राइल के साथ हुआ, ऐसा मानते हैं कई लोग, जो हो चुका है। इसलिए हो चुके पे इतना ध्यान ना देके हम नए नियम पे ध्यान देते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बाद है। और ये माना जाता है कि सुषमाचार युग के ईसाइयों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो नया नियम है, बल्कि पुराना नियम नहीं है। क्योंकि हम इज़राइल के तजुर्बे देखते हैं, पुराने नियम में लड़ाइयाँ हुई, खास लोग देख रहे हैं, उनके वचन देख रहे हैं, उनके जीवन देख रहे हैं, इज़राइल की यात्रा देख रहे हैं, मिस्र की गुलाम हुआ, मिस्र की गुलामी से छुटकारा हुआ, बहुत कुछ, ये सब कुछ पुराने नियम में है। तो प्रश्न है एक, अगर ये खाली इतिहास है या बाइबल का इतिहास है, तो इतिहास में अगर हमारे लायक कोई चीज नहीं है तो ये बाइबल में क्यों है, परमेश्वर के वचन में क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का वचन तो 66 किताब है ना, तो 39 किताब जो नए नियम से ज्यादा तो पुराने नियम में है। अगर इसका कोई महत्व नहीं है, अगर ये खाली इतिहास है, तो ये बाइबल में है ही क्यों फिर, प्रश्न है ना। अगर ये सब कुछ हो चुका है हजारों साल पहले यहूदियों के समय, जैसा भी मनुष्य की शुरुआत से लेके, तो ये फिर बाइबल में क्यों है, इसका क्या मकसद क्या है, है ना। और अंत में एक बहुत बड़ा प्रश्न कि ये पुराना नियम हम जो आज के ईसाई हैं हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, हमारे लिए क्या खास है पुराने नियम में, हमारे सीखने लायक क्या चीज़ है। क्योंकि कुछ भी हम पढ़ते हैं किस चीज़ के लिए, सीखने के लिए, है ना। तो हमारे सीख के लिए क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर तीन कारणों से देंगे हम। कारण एक, इब्रानिया 10 का एक पढ़ेंगे। कारण एक क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका कारण एक
बस्ता एक
जी,
क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते।
तो हम देखते हैं इस वचन का मतलब क्या है। इसमें बोला है प्रतिबिंब आने वाली अच्छी वस्तुओं के। तो प्रेरित पौलुस यहाँ पे बोल रहा है व्यवस्था, मूसा का जो मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई, कानून दिया गया, जो वो था एक परछाई, प्रतिबिंब, कुछ आने वाली अच्छी वस्तुओं की असलियत नहीं, वो असलियत नहीं थी, वो क्या था, सिर्फ
परछाई।
लेकिन वो परछाई की असली चीज आने वाली थी, अच्छी चीज आने वाली थी आने वाले समय में। ये पौलुस बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ लो, व्यवस्था, क्योंकि व्यवस्था,
क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रक्रम है,
हाँ,
पर उनकी असली स्वरूप नहीं।
बस तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है व्यवस्था जो है ये असली चीज नहीं है, ये तो सिर्फ एक नमूना है, एक परछाई है, एक प्रतिबिंब है, अच्छी चीजें तो अभी आनी बाकी है। ठीक है, कब प्रश्न उठता है, कब, तो इसका उत्तर है प्रभु यीशु मसीह के बाद। हम आज तक 10 क्लास में ये जान चुके हैं कि परमेश्वर ने एक पूरी योजना बनाई है, मतलब असंपूर्ण योजना नहीं, पूरी संपूर्ण योजना। ठीक है, हम समझ चुके हैं ये बात। और ये जो योजना थी, ये जब तक प्रभु यीशु मसीह आए नहीं तब तक किसी को भी समझ नहीं आई, क्योंकि बाइबल कंप्लीट कब होती है, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद, जब नया नियम लिखा गया, और नए नियम की मदद से ही पुराना नियम समझा जा सकता है, और पुराने नियम की मदद से ही नया नियम समझा जा सकता है, एक दूसरे के साथ ये कड़ियां जुड़ी हुई हैं। तो ये अच्छी चीजें, अच्छी वस्तुएं जिसके बारे में पौलुस बोल रहा है, ये है परमेश्वर की योजना के अनुसार जो उसने मनुष्य जाति के लिए उदारता रखी है, सारी मनुष्य जाति के लिए उदारता रखी है। और वो किस चीज पे आधारित है, वो है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पे, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पे, प्रभु यीशु मसीह की सलीब वाली मृत्यु पे। अगर मान लो प्रभु यीशु मसीह को सलीब पे ना चढ़ाया जाता और प्रभु यीशु मसीह वो कुर्बानी वाली मौत नहीं मरते, तो क्या ये योजना पूरी होती, पाप की मजदूरी प्रभु यीशु मसीह पे मृत्यु का दंड नहीं था, क्यों, क्योंकि वो पापी
नहीं थे,
समझ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो जिए जाते, क्योंकि ना तो वो आदम के वंश से थे और ना ही आदम पे जो परमेश्वर ने श्राप दिया था उसके अधीन थे, सही ना। तो अगर प्रभु यीशु मसीह, मतलब जो सेंटर है ना परमेश्वर की योजना का, जो सेंटर है जिसे आप मध्य बोलते हो, वो है प्रभु यीशु मसीह और उसकी क्रूस वाली मृत्यु, वो छुड़ौती की रकम जो अदा की ना प्रभु यीशु मसीह ने, याद है हमारे दूसरा लेसन छुड़ौती। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह में ही परमेश्वर की योजना पूरी होती है। और ये सारी बातें जो आने वाली अच्छी वस्तुएं बोला है, वो है प्रभु यीशु मसीह के बाद, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद व्यवस्था के अधीन पैदा हुए थे। गलातियां 4:4 में पढ़ लो ये बात, गलातियां 4:4, हाँ जी,
परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ।
तो प्रभु यीशु मसीह भी व्यवस्था के क्या हुए, अधीन पैदा हुए। तो ये है वो अच्छी वस्तुएं, अच्छी वस्तुएं का मतलब क्या है, परमेश्वर की मनुष्य जाति के लिए उद्धारता की योजना जो किसमें है, प्रभु यीशु मसीह में। और प्रतिबिंब का मतलब क्या है? नमूना। एक आर्किटेक्ट है ना, आर्किटेक्ट जो नक्शे बनाता है, उसके ऑफिस में जाओ आप, क्या मिलेगा आपको? उसने क्या कांच का एक बनाया हुआ होगा या पेपर पे ड्रॉ किया होगा, नक्शा होगा, वो क्या है? नमूना। लेकिन उससे आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, असली चीज कब होगी? जब घर बन के तैयार होगा। हाँ, अब वो जो वैसा दिख रहा था वैसा ही है, लेकिन हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते जब खाली नमूने को देखें, सही ना? इसी तरीके से बाइबल जो है, खास करके पुराना नियम, पूरा नमूनों से भरा हुआ है, लेकिन उसकी असलियत किस में है? प्रभु यीशु मसीह में। हर एक चीज का कुछ ना कुछ मतलब है। इज़राइल गुलामी में गया, उनका छुटकारा हुआ, परमेश्वर उनको वायदा की हुई जमीन कनान में लेके गया, ये सब नमूने थे, लेकिन उनकी असलियत पूरी होनी अभी बाकी है। कुछ पूरी हो चुकी है, कुछ बाकी है। तो ऐसा नहीं समझना कि पुराना नियम बस इतिहास ही है, नहीं, पुराने नियम में जो कुछ हुआ वो था क्या? नमूना। लेकिन जो पूरा होगा वो होगी असलियत, फिर पता चलेगा। अरे हाँ, उदाहरण के तौर पे इब्रानियां 10:4 में हम पढ़ ले कि परमेश्वर के तंबू में बलिदान होते थे बकरों के और बैलों के, पढ़ लो। तो पौलुस बोलता है, क्या बोलता है?
क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे।
तो ये परमेश्वर ने ही बोला था ना, इसराइल को व्यवस्था दी कि तुम्हारा साल में एक प्रायश्चित का दिन है जिसमें तुम्हारे पिछले साल के सारे पाप माफ किए जाएंगे, बलिदान करना है क्या? बैल और बकरा। पौलुस बोलता है बैलों और बकरों के लहू से पाप साफ नहीं होते, नहीं होते। तो फिर वो क्यों करते थे, इसराइल वाले क्यों करते थे? अगर पाप साफ नहीं हो सकते हैं तो वो क्यों करते थे, है ना प्रश्न? कितनी बड़ी बात है। पौलुस, पढ़ लो फिर से, पढ़ो बात फिर से।
क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पाप को दूर करे।
ऐसा नहीं हो सकता कि जितने मर्जी बैल काट दो, बकरे काट दो, तुम्हारे पाप साफ नहीं होने वाले इससे। ये पौलुस बोला, परमेश्वर ने इनको बोला, इसराइलियों को, तुम्हारे लिए एक प्रायश्चित का दिन है, कानून है ये, जिस दिन मुख्य याचक क्या करेगा? प्रायश्चित करेगा। हाँ, सब वो सब। हाँ, तो फिर ऐसा क्यों बोला परमेश्वर ने? तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो इसराइल कर रहा था, एक्चुअल में उनके पाप उससे धुलने वाले नहीं थे, वो सिर्फ एक नमूना कर रहे थे। कब तक? जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आया। वो पूरा किसमें हुआ? प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए उसको क्या बोला? परमेश्वर का मेमना, लेला। तो कहने का मतलब नमूना क्या था? वो जो बलिदान करते थे, लेकिन असलियत क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने जगत के लिए अपनी कुर्बानी देके सारे जगत को पाप और मृत्यु से क्या कर दिया? छुड़ाया। तो ये है असलियत। तो इसलिए पुराने नियम की क्या महत्व है, उसका पहला कारण है कि पुराना नियम पूरा नमूनों से भरा हुआ है, जिनकी असलियत कुछ और है, जिसे हमें समझना है, जिसे हमें जांचना है, जिसे हमें परखना है, जिसे हमें हमसे हम जिससे हमें सीखना है। तो ये है पहला कारण कि पुराना नियम पूरा किससे भरा हुआ है? नमूनों से। लेकिन उसकी असलियत क्या है वो हमें पता करनी है। वो कब पता करेंगे? जब आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा देगा, ठीक है? तो एक कारण ये हुआ। दूसरा कारण क्या है पुराने नियम के महत्व का और बाइबल में क्यों है हमारे सीखने के लिए, क्या है? रोमिया 15:4,
15 था, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र साथ के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें।
जितनी बातें अंडरलाइन कर लो, पहले लिखी गई मतलब पुराने नियम में जो लिखा गया है वो किसके लिए है? हमारी शिक्षा के लिए। हमारी कौन? कलीसिया की शिक्षा के लिए। के कलीसिया क्या सीखे? धीरज, सबर, ये सब कुछ सीखे। आप पूछोगे कैसे? मैं आपको पिछले हफ्ते बता रहा था ना, जैसे जब शारीरिक बीमारी आती है ना, शारीरिक बीमारी को चंगा करने के लिए केमिकल्स हैं, बुखार को पैरासीटामोल, डिस्प्रिन है सरदर्द के लिए, जुकाम के लिए एवल है ना, ठीक होता है ना। तो शारीरिक बीमारी को दूर करने के लिए शारीरिक दवाई, वो भी परमेश्वर की कृपा से। आत्मिक बीमारी को दूर करने, आत्मिक बीमारियां भी हैं, बहुत बड़ी भयानक आत्मिक बीमारियां हैं, को दूर करने के लिए शारीरिक दवाई काम करेगी? आत्मिक बीमारी को दूर करना है तो आत्मिक दवाई चाहिए, और आत्मिक दवाई आपको कहां से मिलेगी? वचन से। उदाहरण के तौर पे, अगर किसी का विश्वास कमजोर हो रहा है या वो थक गया है, डगमगा रहा है, तो उसके लिए आत्मिक दवाई है इब्राहिम। इब्राहिम की कहानी पढ़ो, आपको एक ताकत मिलेगी। 99 साल तक 100 साल तक सब्र रखा, और सबर रखा, जब सबर पूरा हुआ, बेटा हुआ, बेटा होने के बाद परमेश्वर बोल रहा है अभी इसका मुझे बलिदान चाहिए। परमेश्वर बोलता है अपने इश्माइल और इसकी पत्नी को घर से निकाल दे। इश्माइल से भी तू बहुत प्यार करता है, देखिए बाप को दोनों से प्यार है, इश्माइल से भी, इसहाक से भी, चाहे वो अलग अलग पत्नियों से हैं लेकिन प्रेम तो था ना। लेकिन परमेश्वर ने बोला इनको घर से निकाल। अभी उसको घर से निकलवा दिया, एक बच्चे को निकलवाने के बाद परमेश्वर बोलता है दूसरे का मुझे बलिदान चाहिए। इब्राहिम सोच रहा होगा परमेश्वर ये क्या कर रहे हो, इसका बलिदान चाहिए था तो वो तो मेरे पास रहने देते एटलीस्ट। देखा तो, लेकिन इब्राहिम ने विश्वास रखा और अपने नौकरों को पता क्या बोल के गया इब्राहिम, तुम यहां रुको, हम वापस आते हैं, हम वापस आएंगे। उसने ये नहीं बोला मैं वापस आऊंगा, उसने क्या बोला? हम वापस आएंगे। तो ये आत्मिक दवाई का काम करती है, आपके विश्वास को मजबूत करती है। और अगर उत्साह की बात करें, जील, उत्साह, बहुत ज्यादा उत्साह, तो दानियल, जब उत्साह में कमी आ जाए ना तो दानियल के बारे में सोचो, दानियल के बारे में पढ़ो, आपको ताकत मिलेगी। दानियल के चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन थे, मैंने बताई थी उदाहरण ना, दरवाजे खोल के नमाज अपना परमेश्वर को प्रणाम करने जाता था, राजा ने शेरों के सामने फेंक दिया, क्या हुआ? और महिमा मिल गई, राजा ने और ऊंचा ओहदा दे दिया, क्या बात है।
सपनों में लेकिन
तो ये दूसरी दवाई। तीसरी दवाई, जब आप बहुत कष्ट से गुजर रहे हो या बीमारी या कुछ भी, बहुत परेशानी का माहौल है परिवार में, बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हो, तो अय्यूब के बारे में पढ़ो। अय्यूब के बारे में पढ़ने से आपको तसल्ली मिलेगी। तो ये दूसरा कारण ये है कि जो पुराना नियम है ये एक दवाई का काम करता है, आत्मिक दवाई, जिससे हमें क्या मिलती है? हिम्मत, ताकत, विश्वास। जैसे अय्यूब क्या बोलता है? बोलता है अकेला आया था, अकेला चला जाऊंगा, परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया है, तो उसके नाम को धन्य आंखों बोलो, है ना। ये सब कैसे हमें तसल्ली देती है? हाँ यार, क्या लेके चले जाना है दुनिया से, मरना तो है ही एक दिन, ठीक है। तो ये एक आत्मिक, इसी तरीके से बहुत आत्मिक दवाइयां हैं। नूहा का देखा कैसा मजाक उड़ाते थे, बारिश नहीं हुई और ये बोल रहा है इतना पानी बरसेगा, ये क्या पागल हो गया ये। मूसा लड़ता रहा जाके, सीधा बोल देता था फारो को, जोसफ, दाऊद, सुलेमान, एलिया, कितनी दवाइयां हैं, आत्मिक दवाइयां। तो ये जो हमें हौसला और तसल्ली देती है। तीसरा कारण है क्या? तीसरा, दो कारण हो गए, एक तो ये कि पूरा नमूना से भरा हुआ है उसकी असलियत कुछ और है, दूसरा आत्मिक दवाई का काम करता है। तीसरा कारण, पहला कुरिन्थियों 10:11,
परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, जो सांस की रुचि पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है।
फिर से पढ़ो, समझ आया कुछ?
परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, जो सांस की रुचि पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं
समझे?
लिखी गई
नहीं, ठीक है, ठीक है, समझे? क्या क्या समझे तुम?
मतलब जो भी परमेश्वर हमें बातें समझे वो सब दुष्टांत के द्वारा बन जाते थे ना, परमेश्वर ही है।
फिर से पढ़ो।
ऐसे पढ़ा तुमने आपने
पढ़ पढ़
सो ये गल्लां उन्हां उत्ते नसीहत दे लई होईयां ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤ
ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ।
ਅਬ ਕਿਆ ਸਮਝੇ?
ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਮੇਂ ਕਿਆ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯੇ ਵੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਬਾਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੋ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕੇ ਲਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਨਹੀਂ। ਇਸਰਾਇਲ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਘਟਨਾਏ ਹੋਈ वो सिर्फ एक तरह के नमूने थे, वो ट्रेलर जिसे बोल लो, वो दृष्टांत थे, असलियत हम में पूरी होनी है। असलियत हम में कलीसिया में पूरी होगी। अब पढ़ के देखो ये बात बनती है या नहीं बनती है?
परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी,
पड़ी यानी हुई उनके साथ,
दृष्टांत की रीति पर थी,
उनके लिए नमूना था वो,
और वे हमारी चेतावनी के लिए,
चेतावनी
जगत के अंतिम समय में रहते लिखी गई है।
सावधान हो जाओ, वो जो उनके साथ हुआ था वो तो दृष्टांत था, लेकिन तुम लोगों के साथ असलियत में होगा, समझे? तो एक एक उदाहरण हम पढ़ेंगे ये नमूनों की, नमूने की, ये जो मैंने बताया ना नमूना और असलियत, एक पढ़ेंगे एक हमारी स्टडी में, क्योंकि उसमें बहुत समय निकल जाएगा। उत्पत्ति 24:1-67 तक, ये आप हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, मेन मेन कहानी आपको सुनाऊंगा, बाद में पढ़ लेना पूरा चैप्टर। 1-67 तक क्या होता है? 24:1-67, तो आप 1 और 2 पढ़े पहले। ये कहानी है, अब्राहम अपने नौकर को भेजता है अपने इकलौते पुत्र की दुल्हन ढूंढने के लिए, इसहाक की दुल्हन ढूंढने के लिए, और वो बोलता है यहाँ से नहीं दूर देश में जा। तो शुरू करते हैं, 1 और 2 पढ़ो, 24:1-2, उत्पत्ति 24:1-2।
अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुर्निया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपने हाथ मेरी जान के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूँ किसी को ना लाएगा।
दो तक, ठीक है। तो अब्राहम बूढ़ा हो गया, मरने की कगार पे था, उसने योजना बुलाई और बनाई कि मेरे पुत्र की दुल्हन तो कनानियों में से नहीं, मेरे देश में से जान लेके आ, ठीक है। तो वो शपथ लेता है अपने नौकर से, वो नौकर कौन था?
उनकी संपत्ति का अधिकारी हो,
जो जो मुख्य दास, जो मुख्य, हाँ, तो तीन और चार पढ़ लो।
और उससे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ था कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूँ किसी को ना लाएगा, परंतु तू मेरे पुत्र, तू मेरे देश में से मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसाक के लिए एक पत्नी ले आएगा।
तो ये नौकर कौन था? एलियाइजर, एलियाइजर नाम का नौकर था। ये पढ़ लो बात, उत्पत्ति 15:2।
एक मिनट कुछ पूछना था, तू यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मैंने बहुत जगह पढ़ा है, अपने हाथ मेरी जान के नीचे रख के शपथ था, इसका क्या ये?
मैं इसका बाद में बताऊंगा।
क्या अभी क्या 15
उत्पत्ति 15 इधर हाथ रखना, ये 24 वाले में हाथ रखो, ठीक है? 15:2
अच्छा 15:2 अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्बल हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा?
तो ये नौकर जो था, जो दास, ये था एलियाइजर। तो अब्राहम अपने नौकर एलियाइजर को बुलाता है और बोलता है कि मुझे मेरे बेटे के लिए दुल्हन चाहिए, लेकिन वो कनान से नहीं चाहिए, मेरी जाति वालों में से लेके आ। ठीक है, तो जो बहुत दूर रहते हैं मेरे देश जा और मेरी जाति से लेके आ। उसके बाद 10 पढ़ो, ये पूरा आप पढ़ लेना, पूरी कहानी आप पढ़ लेना।
किसी में से 10 पढ़ना,
हाँ, 24:10
ठीक है। तब वह दास अपने स्वामी के ऊंट में से 10 ऊंट छांट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ ले कर चला और मेसोपोटामिया में नहोर के नगर के पास पहुंचा।
तो ये दास एलियाइजर 10 ऊंट छांटे, अच्छे अच्छे 10 ही क्यों, ज़्यादा क्यों नहीं, और अच्छा अच्छा सब कुछ लिया और निकल पड़ा मेसोपोटामिया की तरफ, नाहूर नाम के शहर की तरफ। ठीक है, तो ऐसा हुआ, जो अपने मालिक की आज्ञा का पालन करके तो एलियाइजर निकलता है। अभी 11 पढ़ लो। अगर
उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया, वह संध्या का समय था जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती हैं।
तो क्या हुआ कि एलियाइजर गया और असमंजस में था, क्या हो क्या नहीं हो, तो उसकी यात्रा एक कुएं पे ख़त्म होती है। एलियाइजर की यात्रा कहाँ ख़त्म होती है? कुएं पे, क्योंकि कुएं पे कौन आता है? लड़कियां पानी भरने आती हैं। एलियाइजर बैठता है अपने ऊँटों के साथ और उस कुएं पे इंतज़ार करता है और प्रार्थना करनी शुरू करता है। 12-14 पढ़ लो।
वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर, देख मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं, इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ और वह कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, यह वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो, इस रीति मैं जान हुआ कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है।
तो एलियाइजर बैठा और प्रार्थना करनी शुरू की, परमेश्वर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे मालिक ने मुझ पर सौंप दी और आपकी गाइडेंस चाहिए, मुझे मदद चाहिए इस बात में। और प्रार्थना में एक चिन्ह मेंशन करता है, चिन्ह चिन्ह बताता है। चिन्ह क्या बोलता है कि वो लड़की जो मुझे पानी पिलाए और ये बोले कि तेरे ऊँटों को भी पिलाती है, पिलाती हूँ, तो वही होगी इसाक की पत्नी। तो आगे क्या होता है, 15 में पढ़ लो।
और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रही रहा था कि रिबका जो अब्राहम के भाई नहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतुए की बेटी थी, वह कंधे पर भरा लिए हुए आई। आगे
कंधे, बस बस 15 होगी ना।
हाँ।
तो देखो अभी बात ही कर रहा था, प्रार्थना खत्म ही कर रहा था, रिबका आ रही है कुएं से पानी भरने, जो बतुएल की पत्नी बेटी थी। ठीक है, तो 16 में पढ़ लो आगे क्या है।
वह अति सुंदर और
बतुएल पता कौन था? बतुएल था इब्राहिम के भाई का बेटा, उसकी बेटी। ठीक है, तो 16 में पढ़ लो आगे।
वह अति सुंदर और कुंवारी थी और किसी पुरुष का मुंह न देखता था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई।
तो कुंवारी थी, बहुत सुंदर थी और किसी इंसान ने कभी उसको छुआ नहीं था। तो आगे 17-19 पढ़ लो।
तो वह दास उससे भय करने को दौड़ा और कहा, अपने घरे में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, दे पीले। और उसने जल्दी से घड़ा उतार के हाथ में लिए हुए लिए उसको पिला दिया। तब जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वे पी न चुके।
देखो तो एलाइजर ने पूछा पानी मिलेगा, वो बोलती है जरूर मिलेगा, और ये भी बोलती मैं तेरे ऊँटों को भी, ऊँटों को पानी पिलाना कोई मजाक की बात नहीं है। और ऊँट कितने थे? 10 ऊँट से 10 ऊँट, और 10 ऊँटों को बिना थके रिबका पानी पिला रही है। जरा सोचो उसकी जील, उसका उत्साह। चलो ये सब हुआ तो आगे 20 और 21 में पढ़ लो।
तब वह तुरंत अपने घड़े का जल पौधे में उड़ेल कर फिर कुएं पर भरने के को दौड़ गई और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया।
इसका मतलब 10 ऊँटों को पानी पिलाया। जरा सोचो अगर 10 घड़े भी एक ऊँट ने पिया तो कितने घड़े हो गए? 100 घड़े पानी। हाँ।
वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ यह सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है।
तो वो
नहीं,
वो देख रहा है परमेश्वर ने मेरी यात्रा को सफल कर दिया। जब ये हो गया तो परमेश्वर को धन्यवाद भी किया होगा। अभी नहीं रिकॉर्डेड है, अरे थैंक यू फादर, आपने मुझे जो चिन्ह मैंने आपसे पूछा वो मुझे आपने दिखा दिया। आगे फिर पढ़ो 22।
जब ऊँट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकालकर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथ में पहना दिए।
तो एक तो नथ, यहाँ पे नथ है लेकिन इंग्लिश में है ये इयररिंग्स, बालियाँ। ठीक है, जो नाक तक आती हैं ऐसे ऐसे वाली, और 2 सोने के कंगन। तो जरा सोचो कितना अचंबा और हैरानी की बात रिबका को मिली होगी कि अरे वाह वाह वाह, मुझे तो इनाम मिल गया, सोने के गहने मिल गए। ठीक है, वो भी 10 ऊँटों को पानी पिलाने के बदले में, तो बहुत हैरान हुई होगी। ठीक है, तो 23 में आगे पढ़ लो फिर आगे क्या।
और पूछा, तू किसकी बेटी है यह मुझको बता, क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है?
तो एलाइजर पूछता है तुम्हारे घर में कौन कौन है, किसकी बेटी है तू, अगर मैं चाहे तो मैं तुम्हारे घर पे रुक सकता हूँ। तो 24 में पढ़ लो आगे।
उसने उत्तर दिया, मैं तो नहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतुएल की बेटी हूँ।
ठीक है, तो वो मतलब कहने का ग्रैंड डॉटर थी इब्राहिम के सबसे बड़े भाई नाहोर की। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं 25 में।
फिर उसने उससे कहा, हमारे यहाँ पुआल और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है।
तो वो फिर उसको इनवाइट करती है अपने घर में, जगह भी है और जानवरों के लिए चारा भी है, तो आप आओ हमारे घर पे। आगे 28 से 31 पढ़ लो।
तब उस कन्या ने दौड़कर अपने पिता के घर में ये सारा वृत्तांत कह सुनाया।
भागी गई घर जाके बताया, अरे ऐसा ऐसा हुआ। हाँ,
तब लवान जो रिश्ता का भाई था बाहर कुएं के निकट उस पुरुष के पास दौड़ा आया। और ऐसा हुआ कि जब उसने वह नट और अपनी बहन रिबका के हाथों में वे कंगन भी देखे और उसकी यह बात भी सुनी कि उस पुरुष ने मुझसे ऐसी बातें कही, तब वह उस पुरुष के पास गया और क्या देखा कि वह तोते के निकट टूटों के पास खड़ा है।
तो जब देखा, भागा गया, देखा देखूं कौन है, तो देखा वो खड़ा है तोते के पास। सब ये आगे 34 पढ़ लो।
तब उसने कहा, मैं तो इब्राहिम का दास हूँ।
तो उसने पूछा, कौन है तुम? वो बोलता, मैं तो इब्राहिम का दास हूँ। आगे फिर कहानी पढ़ो 35 से लेके 48 तक।
यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया और उसने उसको भेड़ बकरी गाय बैल सोना रूपा दास दासियां ऊंट और गधे दिए हैं और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है और उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया है। मेरे स्वामी ने मुझे यह शपथ खिलाई है, मैं उसके पुत्र के लिए करानियों की लड़की में से जिनके देश में वह रहता है कोई स्त्री नहीं लाऊंगा। मैं उसके पिता के घर और कुल के लोगों के पास जाकर उसके पुत्र के लिए एक स्त्री ले आऊंगा।
पढ़ते जाओ 48 तक।
48 हो गए,
35 से लेकर 48 तक हो गया। चलो मैं आपको संक्षेप बता देता हूँ।
तब मैंने अपने स्वामी से कहा, कदाचित वह स्त्री मेरे पीछे ना आए। तब उसने मुझे से कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ वह तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा और तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री ला सकेगा।
तो चलिए मैं बता, क्या है कि सारी स्टोरी बताता है। इब्राहिम ऐसे है, उसको बहुत परमेश्वर ने आशीष दी है, उसने ऐसी योजना बनाई, परमेश्वर ने हमें चलाया, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, ये चिन्ह मांगा और रिबका ने पूरा किया। सारी कहानी वहाँ पे बता के फिर उनकी पूछता है, उनसे पूछता है 49 वचन पढ़ो। क्या पूछता है?
इसलिए
हाँ बोल पढ़ो।
इसलिए अब यदि तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझसे कहो, और यदि नहीं चाहते हो तो भी मुझसे कह दो ताकि मैं दाहिनी ओर
या बाईं ओर और मुड़ूं। तो वो बथुएल से और उसके भाई रिबका के लबान से उनका फैसला पूछता है, हाथ मांगता है। तो बोलता है, आप मुझे बताओ कि मैं दाएं मुड़ूं या
बाएं
मुड़ूं। दाएं या बाएं मुड़ने का मतलब क्या है? दाएं का क्या मतलब होता है? जब मैं आपसे हाथ मिलाता हूँ, आप कौन सा हाथ मिलाते हैं?
बायां मिलाता
है। जब अगर कोई बायां मिलाता है तो उसको क्या बोलते हैं? बायां नहीं मिलाते। क्यों? क्योंकि दाएं का मतलब होता है स्वीकार, बाएं का मतलब होता है रिजेक्ट। स्वीकार और रिजेक्ट।
सीधा हाथ मिलाते हैं और उल्टा हाथ जब कोई मिलाता है तो मना करता है, रिजेक्ट करता है।
उसने बोल रहा है ना, मैं दाएं बोल मुड़ू या बाएं। दाएं का मतलब कि मैं तुम्हारा फैसला हाँ समझू या ना समझू।
ये भी चिन्हात्मक वाली बात हो गई।
आगे 50 और 51 पढ़ लो।
तब लवान और बतुएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते हैं ना बुरा।
तो ये अगर बोलते हैं, अगर ये परमेश्वर की ओर से है तो हम क्या बोलें? हम कुछ नहीं बोल सकते। और ये बोल आगे बोलते हैं, देखो वो रिबका उसको ले जाओ, आगे पढ़ लो ये बात है क्या बनने,
देख रिबका तेरे सामने है उसको ले जा और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए।
तो 53 आगे 53 में पढ़ लो,
फिर उस दास ने सोने और रुपए के गहने और वस्त्र निकाल कर रिबका को दिए और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल वस्तुएं दी।
देखिए कुएं पे पहले मिल रहा है सोने के वस्त्र, सोने के गहने, अभी घर पे मिल रहा है, यहाँ पे गलत थोड़ा हिंदी में है लेकिन इंग्लिश में है, सबसे पहले चांदी के गहने उसके बाद सोने के गहने साथ में वस्त्र, चांदी सोने और वस्त्र, ठीक है। और इतना ही नहीं उसके परिवार वालों को भी कीमती कीमती चीजें दी इलाइजर ने, है ना। तो ये देखो हैरानी की बात है ना कि पहले सोना दिया बाद में चांदी दी जा रही है ना। तो इसका भी कुछ खास मतलब है, बहुत गहरा छुपा हुआ महत्व है, वो हम बताएंगे थोड़ी देर में, पहले ये पूरी ख़त्म कर ले कहानी। उसके बाद 54 से लेके 56 तक,
तब उसने अपने संगी जनों समेत भोजन किया और रात वहीं बिताई। उसने तड़के उठकर कहा, मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा कहो। रिबका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन और रहने दे, फिर उसके पश्चात वह चली जाएगी। उसने उससे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है इसलिए तुम मुझे मत रोको, अब मुझे विदा करो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊँ।
तो रात गुजर गई और रात गुजरने के बाद एलाइजर को याद आता है, मैं तो किसी मकसद के कहता हूँ, सुबह उसके बोलता है कि मुझे इजाज़त दी जाए मैं जाऊँ क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी अपने मालिक के पास पहुँचना है। तो वो विनती करते हैं कि 10 दिन और रहने दो, जैसे आजकल बोलते हैं लड़की अपने मायके जाती है थोड़े दिन और रहने देते हैं, ठीक है। तो वो भी बोलते 10 दिन और रहने दे, लेकिन एलाइजर बोलता है मुझे अभी जाने की इजाज़त दो। तो फिर वो पूछते हैं रिबका से, रिबका तू इस इंसान इसके साथ जाएगी, पढ़ लो 58 में बात
है। और उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी।
देखो
उसने कहा, हाँ मैं जाऊंगी,
कोई असमंजस नहीं। देखो वो बोलते हैं ना आजकल हमारे दकियानुसी रिवाज भी, अरे हम बच्चों का रिश्ता कर रहे हैं बच्चों से क्या पूछना है। इब्राहिम के समय में देखो रिबका तो उस इंसान के साथ जाएगी, बोलती हाँ मैं जाऊंगी। हमें भी थोड़ा अभी सीखना चाहिए इससे, ओपन माइंड होना चाहिए कि जिसके जिसके जीवन का फैसला हो रहा है उससे पूछे, ठीक है। तो वो बोली मैं जाऊंगी। तो देखो रिबका का विश्वास, उसने नहीं सोचा मैं इतनी यात्रा में अकेले इसके साथ कैसे जाऊंगी, बोली मैं जाऊंगी, ठीक है। वो 24 घंटे भी नहीं हुए थे उस इंसान को जानते हो क्योंकि शाम के समय एलाइजर कहाँ बैठा, कुएं पे, और रात बिताई और अगले दिन सुबह उठ गया, तो 24 घंटे भी नहीं हुए थे ना। हाँ तो आगे 60 पढ़ लो 60, फिर जब निकलने जा रहे।
और उन्होंने रिबका को आशीर्वाद दे के कहा, हे हमारी बहन तुम हजारों लाखों की आदि माता हो।
हजारों
लाखों की,
ये कैसा आशीर्वाद है, कोई अपनी बेटी को ऐसा आशीर्वाद देता है, और कोई औरत हजारों की माँ बन सकती, लाखों की तो दूर की बात है, हजार बच्चे पैदा कर सकती है कोई औरत, तो ये कैसा आशीर्वाद था, सोचने वाली बात है ना। रिबका जो इसाक की पत्नी होने जा रही थी उसको बोला तू किन की माँ हो,
संतान भाई पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों लाखों बोला
वो बताते हैं ना, माँ दादी माँ बन जाएगी ना फिर, तो वो तो फिर दादी माँ माँ नहीं रहेगी, दादी माँ परदादी माँ नहीं दी होगी, और अंतर है क्योंकि ये नमूना है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये नमूना है जो हो रहा है, असलियत अभी बतानी है आपको बाकी है, ठीक है। तो फिर 61 में क्या होता है, रिबका निकलती है, पढ़ लो 61।
तब रिबका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे हो ली। इस प्रकार वह सास रिबका को साथ लेकर चल दिया।
देखो तो चल गई उसके साथ अपनी सहेलियों के साथ, ठीक है, कुछ सहेलियां उसकी मदद के लिए साथ उसके गई उसके साथ रहने के लिए, ठीक है। तो यात्रा शुरू हो गई फिर इब्राहिम के देश कनान की, मेसोपोटामिया से निकली ये रिबका लाइजर के साथ और कहाँ जा रही है, कनान को, ठीक है। तो अंत में क्या होता है फिर 63 से लेकर 67 तक पढ़ लो।
अंत के समय में मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था,
इसात शाम के समय ऐसे खेतों में निकला घूमने, हाँ, तो
और उसने आंख उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं,
ऊंट चले आ रहे हैं।
रिबका ने भी आंखें उठाकर इसात को देखा,
दूर
और
से देखा,
देखते हाँ। ही देखते ऊंट पर से उतर पड़ी,
हाँ।
तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को आता है तो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढक लिया।
आगे?
दास ने इसाक को अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब इसाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई।
तो ऐसा हुआ, दूर से देखा रिबका ने, रिबका ने लाइजर से पूछा, यही है क्या वो? तो बोलता हाँ यही है स्वामी। चलो ये सब हो गया। चलो ये तो थी कहानी, नमूना। अभी इसकी असलियत क्या है, इससे हम क्या सीखे, कलीसिया के सीखने के लिए क्या है? तो ये था एक नमूना, ये था एक उदाहरण, ये था एक दृष्टांत जो हुआ किसके साथ, इब्राहिम के जीवन में। लेकिन इसका अभी हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या सीखने के लिए, ये अब हम ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले एक परमेश्वर है और परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। परमेश्वर चाहता अपने इकलौते पुत्र की दुल्हन चूज करनी, चुनना चाहता, तो वो स्वर्ग में ही कर सकता था ना। लेकिन वो बोलता है कनान से नहीं चाहिए, स्वर्ग में से नहीं चाहिए, वो दूर जा जहां पे मेरे लोग रहते हैं वहां से लेके आ। तो इब्राहिम किसकी तस्वीर है? इब्राहिम है पिता परमेश्वर। इसाक किसकी तस्वीर है? इसाक है प्रभु यीशु मसीह। और रिबका कौन है? कलीसिया। पढ़ लो ये बात, दूसरा कुरंथिया 11:2। हाँ जी,
क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक रात ही तुम से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुवारी के समान बकरी को सौंप दूँ।
तो ये पवित्र कुवारी कौन है? कौन
नहीं, पवित्र कुवारी वो जो आप बताएंगे जिसका
कलीसिया, कलीसिया प्रकाशित वाक्य 19:7। जी चिन्ह जो है वो तस्वीर है जो, तो प्रकाशित वाक्य 19:7 भी पढ़ लो। जी
आओ हम आनंदित और मग्न हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है।
आपने बोला मरियम, मरियम यीशु मसीह के साथ कैसे शादी कर सकती है? सोचना है, सोच के, इसीलिए ये सोच के बात करनी है। तो एक चुनाव चल रहा है प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन यानी कलीसिया का। अभी ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पहले से एक बहुत बड़ा लगा हुआ और दावत होगी ये वो और डीजे चलेगा बैंड बजेगा ये, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक रिश्ता स्थापित हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये अब्राहम, जैसे मैंने बोला, फिर से नोट कर लो, अब्राहम तस्वीर है किसकी, नमूना पिता परमेश्वर का, क्योंकि जैसे पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया, ऐसे ही अब्राहम ने भी अपने इकलौते पुत्र का बलिदान देने वक्त सरफा नहीं किया, वो सचमुच करने गया था, ठीक है। इसहाक कौन है जिसका बलिदान हो रहा है, और कौन, प्रभु यीशु मसीह, ठीक है। अभी रिबका कलीसिया, ये इलाइजर कौन है, वो तो अब्राहम का नौकर था, अभी अभी असलियत में कौन है इलाइजर, अब्राहम का मुख्य दास कौन है, वो इलाइजर, पवित्र आत्मा, यूहन्ना 16:13 पढ़ लो, सोलह का तेरह।
आज मिलाने से काम पवित्र आत्मा करो, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा।
देखो, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेगा, जो उसको ऑर्डर मिला है
वही बताएगा,
वही करेगा। फिर से पढ़ लो लूका 24:49। तो ये है वो दिव्य शक्ति जिसे हम पवित्र आत्मा बोलते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा। तो इलाइजर तस्वीर है किसकी, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की, और पवित्र आत्मा क्या है, एक शक्ति।
और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वाद से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो।
स्वर्ग से ताकत ना पाओ,
स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ।
करेक्ट,
स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो।
तो ये है एक सामर्थ। तो इलाइजर किसकी तस्वीर है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा काम कर रही है दुल्हन के चुनाव का, दुल्हन का चुनाव का काम प्रभु यीशु मसीह नहीं कर रहा है, कौन कर रही है, पवित्र आत्मा। फिर आगे क्या होता है, परमेश्वर क्या बोलता है, जहां पे मैं रह रहा हूं कनान से मुझे मेरे बेटे के लिए दुल्हन नहीं चाहिए। परमेश्वर कहां है, स्वर्ग में, स्वर्ग में बहुत सारे स्वर्ग दूत हैं। परमेश्वर बोलता है यहां से नहीं चाहिए,
बहुत दूर देश,
वो दूर देश जा, मेरे लोग, मेरी प्रजा उधर से लेके आ, उधर से जा, यानी धरती से चाहिए। कहने का मतलब परमेश्वर ने फैसला किया कि उसके इकलौते पुत्र की दुल्हन दूतों की सृष्टि से ना होके बल्कि धरती की सृष्टि से होगी, दूर देश जा, मेरे दूर देश। और ये कहा दूर देश, कौन सा, धरती। परमेश्वर मनुष्य जाति से अपने इकलौते पुत्र के लिए दुल्हन का चुनाव कर रहा है। और फिर जब ये इलाइजर निकलता है तो कितने साथ में ऊंट लेता है, 10 का मतलब क्या है, आपने पढ़ा होगा, तो 10 सिक्कों वाला दृष्टांत पढ़ा होगा। एक औरत के पास 10 सिक्के थे, एक खो गया, सारा घर साफ कर दिया, झाड़ू लेके मोमबत्ती लेके ढूंढ रही है, जब मिला तो बहुत आनंद हुआ, ठीक है। तो 10 का मतलब क्या है, 10 बहुत खास चिन्ह है बाइबल में। 10 का मतलब है परमेश्वर, ये पूरा परमेश्वर का वचन है, लेकिन इसमें कुछ 10 खास सच्चाइयां हैं जो सिर्फ पवित्र आत्मा की शक्ति से मिलती है। तो ये पवित्र आत्मा देता है वो 10 खास सच्चाइयां, तो इसके लिए एक अलग विषय है, 10 चांदी के सिक्के, जो हम 40 के बाद आएगी क्लास वो पढ़ेंगे, ठीक है, आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। तो पवित्र आत्मा अपने साथ निकला 10 खास सच्चाइयां लेके, और वो सिर्फ किसको बताता है, सिर्फ और सिर्फ कलीसिया को, क्योंकि यूहन्ना 16:13 में क्या बता, वो सारे सच्चाई में तुम्हें क्या करेगा, चलाएगा, तुम्हें सारी सच्चाई देगा। ऐसा नहीं कि एक दे दी और बाकी झूठ, सारी टोटल सच्चाई आपको बताएगा, ठीक है। और इसकी यात्रा कहाँ खत्म होती है, इसकी यात्रा कहाँ खत्म होती है एलाइजर की, कुएं पे, कुएं पे। तो कुएं का मतलब क्या है, बाइबल ये पढ़ लो, यूहन्ना 4:10 दस।
यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि मैं कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती है और वह तुझे जीवन का जल देता है।
जीवन का जल वो कौन है, परमेश्वर का वचन यानी बाइबल। और इस कुएं पे कौन पानी भरने आती हैं, औरतें। औरतों का मतलब क्या है, ईसाई। ईसाई की अलग अलग, जैसे बोलते ना पेंटिकॉस्टल चर्च एक औरत है, रोमन कैथोलिक चर्च एक औरत है, CNI एक औरत है, ये सब पानी भरने आती हैं, पानी लेने आती हैं। कहाँ से, कुएं से, बाइबल से। सच्चाई ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, जीवन का जल ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मिलेगा सिर्फ एक को, और वो है रिबका। ये गहराई में आपको आने वाले समय में बताऊंगा, ठीक है। तो रिबका कौन है, कलीसिया, जो बहुत सुंदर है और कुआरी है, और किसी मर्द के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं जुड़ा है अब तक। उसका उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, और उसमें उसमें शुद्धता है, सच्चाई की, परमेश्वर के वचन में की शुद्धता है, वफादार है, ठीक है। तो ये सब गुण किसमें है, रिबका में। रिबका के पास होगा सत्य, रिबका के पास होगा जीवन का जल, और रिबका को मिलेंगे क्या, हरारत को इनाम मिले वहां पे, नहीं, सिर्फ रिबका को मिलेंगे इनाम, पवित्र आत्मा रिबका को देगी। क्योंकि रिबका में क्या गुण था, उसमें शक्ति, ऊर्जा और उत्साह। कितना उत्साह था कि उसने 10 ऊंट को पानी पिलाया, अपनी मर्जी से बोली। एलाइजर ने बोला उसको कि मेरे ऊंटों को भी पिलाओ,
नहीं, बोली चुकी और मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊं।
देखो तो कितना, मतलब के सेवा, ये दिखाता है गुण सेवा करने का, बिना थके, जिनमें उत्साह है प्रभु के सेवा करने का, सत्य की सेवा करने का, परमेश्वर के वचन की सेवा करने का, उसके लिए चाहे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। जैसे वो उतने ऊँटों को पानी पिला रही थी, घर वाले पूछ, कहाँ थी तू, इधर घर पे पानी चाहिए था, तुम आई नहीं, कहाँ रह गई थी तुम, हो सकता था ना, उसने सब की चिंता
नहीं थी,
उसने उस वक्त जो समय था उसको वो किया। और जब वो कर देती है तो क्या मिलता है, एक तो गोल्ड इयररिंग, इंग्लिश में इयररिंग यानी बालियां, और दूसरा दो कंगन। इसका मतलब क्या है, पवित्र आत्मा रिबका को दो दान देता है, इयररिंग समझदारी के कान, और कंगन। कहां डालते कंगन, यहां परमेश्वर के काम में हिस्सा डालने का मौका। कंगनों का मतलब है, कंगन कहां डालते, हाथ में, हाथ से हम क्या करते हैं, काम, हाथ से हम क्या करते हैं, काम। तो परमेश्वर के सेवा के काम का अवसर पवित्र आत्मा आपको देती है। और बालियों का मतलब है, ईयर रिंग का मतलब है समझदारी के कान, आपको पवित्र शास्त्र की बातें समझ आनी शुरू हो जाती हैं। ये पवित्र आत्मा पहला गिफ्ट देती है किसको, कलीसिया को, रिबका को, कलीसिया को, ठीक है, बन रही है सारी बात अभी, ठीक है। उसके बाद जब वो सारी बात बता देता है, शादी का बता देता है, शादी के बाद फिर उनको फिर से इनाम किस्त मिलते हैं, पहले चांदी, फिर सोना, और फिर वस्त्र। चांदी का मतलब क्या है, सोने का मतलब क्या है, और वस्त्र क्या है, ये एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले चांदी, भजन संगीता 12:6,
परमेश्वर का वचन पवित्र है उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर साई गई और 7 बार निर्मल की गई है।
तो कहने का मतलब, चांदी का मतलब होता है परमेश्वर का
वचन,
ताया हुआ वचन, सत्य का वचन, सच्चाई, प्योर, जिसमें कोई अशुद्धि या त्रुटि नहीं है। तो चांदी का मतलब ये, सोने का मतलब क्या है ये पढ़ लो बात, 2 पत्रस 1:4। जी
जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं,
बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी, ताकि
इनके द्वारा तुम उस करहट से झुककर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से निकली हो।
किसके भागीदार बनो, आगे भी पढ़ो ना,
ईश्वरीय स्वभाव के
सहभागी। तो ये सोना का मतलब है स्वर्गीय बुलावा, ये सड़ाहट, ये शरीर को छोड़ो, आओ स्वर्ग में, ये बुलावा ये परमेश्वर देता है सिर्फ कलीसिया को। कलीसिया क्या है ये हम पढ़ेंगे 17, 18, 19 चैप्टर में। और तीसरी चीज जो मिलती है वो है मिलती वस्त्र। वस्त्र क्या है? धार्मिकता के वस्त्र, यशाया 61:10। तो कलीसिया को ये सब मिलता है। हाँ जी, 10।
मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मग्न रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है।
तो ये है वो वस्त्र जो मिलते हैं। इसलिए ये कलीसिया ये सारे आत्मिक दान पवित्र आत्मा से पाती है, जो दिखाया गया है उस नमूने में जो एलाइजर देता है। इतना ही नहीं, उसके परिवार वालों को भी ये इनाम मिलते हैं। ठीक है, तो आगे फिर 58 में क्या बोलता है, जब सारी बात हो चलती है तो वो बोलते हैं, रिबका से पूछते हैं, तू इसके साथ जाएगी? वो बोलती, मैं जाऊंगी। इसका मतलब क्या है? कलीसिया का विश्वास और भरोसा प्रभु यीशु मसीह पे कि वो उसके कदमों पे चलने पे के लिए किसी भी कीमत पे तैयार है। 1 पत्रस 1:8। रिबका ने तो इसहाक को नहीं देखा था ना, हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा नहीं, देखा फिर भी हमारा प्रेम है।
1 पत्रस 1:8। उसे तुम
बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिना देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मग्न होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है।
समझते हो? आप हस्बैंड वाइफ हो, प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया हस्बैंड वाइफ है, आप एक दूसरे से दूर हो थोड़े समय के लिए, तो क्या लगता है? फीलिंग आती है ना, ये आती है ना कि आप हमेशा मन में यही, अरे मैं कब उसके साथ, कब होऊंगा उसके साथ, कब होती है ना फीलिंग, आती है सबको आती है। तो यही प्रेम होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया का। कलीसिया को वो भूख होनी चाहिए, औरत जैसे बोलती है अपने मर्द को हमेशा चाहेगी, मर्द को ही सबसे ज्यादा चाहती है, उसी की मौजूदगी में वो सबसे ज्यादा खुश रहती है ना, चाहे वो मायके चली जाए, मायके दो तीन दिन के लिए कुछ रहेगी, लेकिन उसके बाद उसको अपने पति की वो चाहती है कि मैं कब से जब कितनी जल्दी मैं अपने पति के साथ जाके मिल जाऊं। तो यही एक तरह का रिश्ता हमारे और प्रभु यीशु मसीह के बीच में होना चाहिए, क्योंकि यही है रिश्ता कलीसिया और किसका, प्रभु यीशु मसीह का। क्योंकि हम तो नहीं जानते हैं उसको, हमने नहीं देखा है, लेकिन हम फिर भी उससे प्रेम रखते हैं। ऐसा ही हुआ ना, रिबका तो नहीं जानती थी कौन है इसहाक, काला है गोरा है नाटा है लंबा है मोटा है छोटा है क्या है, कुछ भी नहीं उसने पूछा, बोली चलो ना चलेंगे। और बाद में जो आशीष मिली वो क्या,
लाखों की हजार।
तो इसका मतलब क्या है कि हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह क्या बन जाएंगे, जब सबको जीवन देंगे पुनर्थान, तो सारे संसार के क्या बन जाएंगे, बाप,
बाप।
और बाप की जो पत्नी है वो क्या बन जाएगी,
आदि माता।
तो ये थी वो आशीष, कलीसिया सारी मनुष्य जाति की माँ होगी और सब उसके बच्चे होंगे, और प्रभु यीशु मसीह सबका क्या होगा, बाप होगा। सही बात ना, है ना। तो प्रकाशित वाक्य 22:17 में ये बात पढ़ लो,
आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाले भी कहें आ। जो प्यासा है वह आए, और जो कोई चाहे वे जीवन का जल ले।
अभी ये यात्रा, ये तो चलो माँ की बात होगी, यात्रा मेसोपोटामिया से शुरू होती है और कहाँ जाती है, कनान। हमारी भी एक यात्रा शुरू है, कौन कहाँ से, धरती से स्वर्ग की यात्रा, और इसमें हमारे साथ कौन होगा, पवित्र आत्मा। हमें चलाएगी कौन, हमारी मदद कौन करेगी, क्योंकि जब वो पहुँचती है सबसे पहले कंफर्म किससे करती है, पूछती किससे है, रिप्ता किससे पूछती है, ये कौन है, पवित्र आत्मा से पूछती है, ये कौन है। तो पवित्र आत्मा ही चलाता है, पवित्र आत्मा ही मदद करता है दूल्हे तक। तो ये चिन्ह पहला पत्रस 3:3-4 बहुत सुंदर वचन है, पढ़ लो। और हमारे रोमन कैथोलिक वालों ने ये वचन पढ़ के क्या कर दिया है, सोना पहनना छोड़ दिया, बोलते ये खराब है। 3:3-4 प्रभु यीशु मसीह दुल्हन में एक सुंदरता ढूंढ रहा है,
तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो,
हाँ,
अर्थात बाल झुकना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना,
हाँ,
वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य को नर्मता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुव्यवस्थित रहे,
उसी
परमेश्वर की दृष्टि में सब मूल्य बड़ा है।
आगे भी पढ़ लो,
में
नहीं, वो जो नम्र और शांत आत्मा परमेश्वर की नजर में बहुमूल्य है, ये नहीं है,
दोबारा पढ़ो
पढ़ो पढ़ो पढ़ो,
तुम्हारा सिंघार दिखावती ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरना तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनस्तत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे,
सुसज्जित रहे,
क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है,
बहुत बड़ा। तो ये वचन दिखा के पेंटिकॉस्टल वाले भाई बहन क्या करते हैं, वो गहने नहीं बनना है, अच्छे अच्छे ये नहीं बोला था पत्रस ने, बोलता है अगर पहनते हो ये सब कुछ तो वो दिखावे का नहीं होना चाहिए, वैसी ही सुंदरता तुम्हारे कैरेक्टर में भी होनी चाहिए। अगर तुम्हारे कैरेक्टर में वो है तो बाहरी सुंदरता को और 4 चांद लग जाएंगे। कभी आपने देखा होगा कलीसिया में सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, वस्त्र वस्त्र पहने हुए हैं, गहने वहने पहने हुए हैं, और उसको आप नम्रता से लोगों के साथ बात करते हैं, हंस के मिले गले मिले तो क्या यार, थोड़ी सी भी इसमें वो मजाज नहीं है, थोड़ा सा भी घमंड नहीं है, सबके साथ मिल रहा है, गरीबों के साथ बैठ के खाना खा रहा है, तो 4 चांद लग जाएंगे ना। पतरस ने ये नहीं बोला था कि सोना पहनना पाप है या सोना पहनना। एक्चुअली क्या होता है हमारे लोगों में क्या है कि दिखावा ज्यादा है। दिखावे में क्या है, जब आप बड़े बड़े गहने पहन लेते हो दूसरों आपकी नजर में, आप सोचते हो, आप सोचते हो लोग आपकी तरफ देखें, अटेंशन देखें, ऐसे होता, अरे क्या सोना पहना यार, इतनी मोटी चीज, अरे इतना बड़ा कड़ा था उसका, 10 तोले का होगा, इतने में जिसने पहना होता है। तो पहनना है तो जमीन पे रहो। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर की नजर में वो बहुमूल्य है, ठीक है, तो ये है इसका मतलब। ये साधारण भाषा में पत्रस ने नहीं बोला था कि सोना नहीं पहनना है, ये बहुत बड़ा पाप है, इससे तुम्हारे ये हो जाएगा, नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे पहनने से कुछ ऐसी घमंड की फीलिंग आती है तो छोड़ दो, तो मत पहनो। अच्छे कपड़े पहनना, साफ सुथरे रहना और गहने पहनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात तब है जब वो दिखावटी हो, समझ गए। तो ये सुंदरता देख रहे हैं प्रभु। प्रभु देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, परमेश्वर की नजर में हमारा ये जो शरीर है ना, ये व्यर्थ है। शारीरिक तौर हमारे शरीर से परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, और ना ही शारीरिक तौर से हमें वो देखता है, वो देखता है हमारा मन। और इस शरीर पे आप जो मर्जी लगाओ, चाहे गोहा लगाओ, चाहे गोबर लगाओ, चाहे सोना लगाओ, चाहे कुछ लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को। परमेश्वर को फर्क पड़ता है आपके मन से, ये क्या चीज है, इसमें दीन आत्मा है या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये सुंदरता होनी चाहिए कलीसिया में। और अंत क्या होगा, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा रहेगी, क्योंकि हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ा दूल्हे की शादी हो जाती है, दूल्हा और दुल्हन एक साथ क्या होते हैं, रहते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, तीसरा कारण हम पढ़ रहे थे नमूनों के, मतलब के नमूने हैं जिनका कुछ आत्मिक मतलब है। एक की स्टडी की, इसकी स्टडी की, इसमें कितने गहरे आत्मिक मतलब छिपे हैं हम हमारे सीखने के लिए। ये दर्शाता है कि कलीसिया की योजना परमेश्वर ने कितनी देर पहले बना ली थी और उसको नमूने के द्वारा प्रकट किया इब्राहिम के जीवन में। इसी तरीके से इब्राहिम का वो तजुर्बा जो बलिदान वाला, परमेश्वर ने जो बलिदान का जो एक सिर्फ वो एक नाटकीय रूपांतरण हुआ है, लेकिन असलियत में बलिदान किसने दिया, परमेश्वर ने दिया ना सचमुच बलिदान, किसका, अपने बेटे का, मोरिया की पहाड़ी। तो वो चिन्ह वो सिर्फ नमूना था, लेकिन असलियत, असलियत प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती है। इसी तरीके से और ये सब कुछ घटनाएं जो जो बाइबल में हो रही हैं, इसराइल के, इसराइल गुलामी में जाता है, मूसा छुड़ा के लेके आता है, मिस्र से निकाल के लेके जाता है, सुलेमान के संगीत, कोई आम इंसान पढ़े ना, आप पढ़ना, कितनी गंदी किताब है, कैसी कैसी बातें लिखी हुई हैं उसमें, श्रेष्ठ गीत में, लेकिन वो बहुत गहरा मतलब है उसका। वो शारीरिक बात नहीं हो रही कुछ भी, वो प्रभु यीशु मसीह और दुल्हन की बात हो रही है। वो दुल्हन बोलती है मैं काली कलूतली हूँ, लेकिन हूँ बहुत सुंदर, इन सबका बहुत गहरा मतलब है, ये आम इंसान की समझ से, ठीक है, वो बस वही सोच सकते हैं, शारीरिक सोच सकते हैं, गंदा सोच सकते हैं। तंबू, उसमें होने वाले बलिदान, ये जो व्यवस्था, 10 हुक्म, ये सब नमूने हैं, इनकी असलियत तो कुछ और है। एक की स्टडी हमने की, धीरे धीरे चलते चलते और भी पढ़ते जाएंगे। इसी के साथ आज का विषय जहाँ पे समाप्त होता है, पुराने नियम का महत्व। परमेश्वर ही हम सबको आशीष दे, आमीन। तो क्लोजिंग प्रेयर हम हमारे ब्रदर जेपी से मिलकर करेंगे।